नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ऑकलैंड पहुंची। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत की जांच अब CBI करेगी। बांग्लादेश में सेना के शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल, नए अधिकारियों ने देश के पुलिस बल का पुनर्गठन किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। दिग्गज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक के अयोग्य घोषित किया गया। और भारत तथा श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंची। वे न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी केरो के निमंत्रण पर वहां गई हैं। राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। एक रिपोर्ट।
इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगी। वह गवर्नर जनरल डेम सिंडी केरो और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। राष्ट्रपति वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। वह ऑकलैंड में एक सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। इस राजकीय यात्रा से क्षेत्रों में बढ़ते संबंधों को प्रगाढ़ता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। न्यूजीलैंड से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने 65 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI केन्द्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों में से 57 केंद्र Tier 2 और Tier 3 शहरों में हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 54 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की आज शाम चर्चा का उत्तर देने की संभावना है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि वित्त विधेयक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस वर्ष के बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्ला सईद ने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट्स को अधिक छूट दे रही है और लोगों की तुलना में कॉरपोरेट्स की कर देनदारियां कम हैं। चर्चा जारी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203 गीगावाट तक पहुंच गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जोशी ने कहा कि 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।
2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है। फ्रॉम 76.38 गीगावाट इन 2014 टुडे इट इज 203.1 गीगावाट हुआ है। हमने अभी जैसे मैंने बताया सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था, आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है।
सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,48,00,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये योजना देश भर में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, परिधान, कृषि और लॉजिस्टिक्स युवाओं के सबसे पसंदीदा क्षेत्र हैं।
PMKVY is our flagship scheme and there are two main trainings that happen. One is the short term training, second is the RPL. electronic and hardware is the most popular. And for specifically the state of Madhya Pradesh, in electronics and hardware, 2 lakh people have enrolled. In apparel, 78,000 people have been enrolled under PMKVY4. In telecoms, 77,000 people have been enrolled.
के कैलाश नाथन ने आज पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद की शपथ ली. राजनिवास में आयोजित समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई. दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाल ही में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के पानी में डूबने से हुई मौत की जांच अब सीबीआई करेगी. इससे पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की थी. ये समिति घटना के कारणों की जांच कर जरूरी उपाय सुझाने के साथ नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं.
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया.
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है. 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है. 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है.
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार.
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. बांग्लादेश में सेना के शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल के बाद नए अधिकारियों ने आज देश के पुलिस बल को पुनर्गठित किया है. नई व्यवस्था के तहत अपर पुलिस महानिरीक्षक मोहम्मद हारून एआर राशिद को एकेएम शाहिदुर रहमान के साथ रैपिड एक्शन बटालियन के महानिदेशक के रूप में बदला गया है. वहीं मोहम्मद मैनुल हसन को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है. इस मामले में गृह मंत्रालय के अंतर्गत जन सुरक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है. कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बांग्लादेश जैसा हिंसक प्रदर्शन भारत में भी संभव है. भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब विदेश गए तो उन्होंने भारत के खिलाफ टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि श्री खुर्शीद का वक्तव्य बेहद गंभीर है.
जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है. चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है.
इस बीच कांग्रेस ने श्री खुर्शीद की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है. पार्टी नेता मणिकम टैगोर ने मीडिया को बताया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है. कल नई दिल्ली में पुस्तक लोकार्पण के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यह टिप्पणी की थी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक देशों से मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर तेजी से बातचीत करने का आग्रह किया है. नई दिल्ली में बिम्स्टेक व्यावसायिक शिखर सम्मेलन के मुख्य संबोधन में श्री गोयल ने कहा कि प्रत्येक सदस्य की आर्थिक मजबूती के बावजूद बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार का आयतन बहुत कम है. विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और बिम्स्टेक व्यापार मंच सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, नीति निर्माताओं और विचारकों, उद्योग तथा शिक्षा जगत, व्यापार संघ और व्यक्तिगत निवेशकों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर ला रहा है. नई दिल्ली में कल शिखर सम्मेलन में श्री मार्गरेटा ने कहा कि वे इस तथ्य से भी प्रोत्साहित हैं कि महिलाओं को व्यापार के मुख्य धारा में लाना शिखर सम्मेलन की कार्यसूची का हिस्सा है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है. भारतीय ओलंपिक संघ ने एक वक्तव्य में कहा कि रात में टीम द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद आज सुबह फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कुछ अधिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए कहा कि ये दुखद है और उनके पास अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलवान फोगाट चैंपियनों में चैंपियन हैं, वे भारत का गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा से भी बात की है और मामले की जानकारी मांगी है। उन्होंने विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों का पता लगाने को कहा है। सूत्रों ने कहा है कि श्री मोदी ने आईओए अध्यक्ष से विनेश फोगाट के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने कहा है। प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से यह भी कहा कि अगर विनेश को मदद मिलती है तो उनकी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। इससे पहले दिन में आईओए ने अपने बयान में बताया कि रात भर टीम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पहलवान विनेश फोगाट का वजन आज सुबह 50 किलोग्राम की सीमा से कुछ ग्राम अधिक था। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज ओलंपिक मुद्दे पर लोकसभा में बयान देंगे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के अयोग्य ठहराए जाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खेल मंत्री दोपहर बाद 3 बजे लोकसभा में इस मुद्दे पर बोलेंगे। वहीं ओलंपिक में आज सबकी नजरें मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत की टेबल टेनिस टीम पर होंगी। ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जर्मनी की टीम से भिड़ेगी। एथलेटिक्स में बाधा धावक ज्योति याराजी, हाई जंपर सर्वेश अनिल कुशारे और ट्रिपल जंपर अब्दुल्ला नारंगो लिंटेविडा तथा प्रवीण चित्रवेल अपनी अपनी स्पर्धा के पहले दौर में उतरेंगे। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर आज स्वदेश लौट आईं। आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रशंसकों तथा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
So now when I look back at all the struggles, all the hard times that I went through, especially the Tokyo phase, I feel like everything was worth it. And now I have these two beautiful pieces of metals around my neck to be able to move on from that and look forward to what the future has to offer for me in the coming years.
क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैच भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे शुरू होना है। श्रीलंका दूसरा एक दिवसीय मैच 32 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आज देश में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश के कारीगरों के प्रयासों की सराहना की और वोकल फॉर लोकल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ऑकलैंड पहुंची। सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत की जांच अब CBI करेगी। बांग्लादेश में सेना के शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल, नए अधिकारियों ने देश के पुलिस बल का पुनर्गठन किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। दिग्गज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक के अयोग्य घोषित किया गया। और भारत तथा श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।